آصف صاحب آج بھی نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل جانا تھا. ٹھیک، جزاک اللہ محدود صاحب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. ہم حدیث مبارکہ یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ بیت المال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو تاوان کی طرح مشکل سمجھیں، امانت کو غنیمت کا مال سمجھیں، مرد بیوی کی تابع داری اور ماں کی نافرمانی کرے، باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں. ٹھیک ہے، یعنی دین کا علم حاصل تو کریں گے لیکن نیت جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے اندر اس کی وجہ سے کچھ مقام مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کچھ عزت مل جائے. اس لیے کہ ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 70-80 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت ایک ایسا گزرا ہے جبکہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی انہونی بات بن کے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، جب اسپیشلی برِ صغیر کے اوپر اور باقی دنیا کے اوپر بھی برطانیہ اور دوسرے یورپین پاورز کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے جو دینی علوم کی درسگاہیں تھیں، مدارس تھے، ان کو ختم کیا، اور ان کے جو پڑھانے والے علماء کرام تھے تو ان کو یا تو جان سے مار دیا. ٹھیک ہے، یہ ٹرکی کے اندر بھی ہوا، یہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی ہوا، یہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر بھی ہوا، اور یہ برِ صغیر کے اندر بھی ہوا. ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہوا، اور یا پھر یہ کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے یعنی مال و دولت کے ذریعے سے ان کو خریدنے کی کوشش کری، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے. تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلمان عوام تھے ان کے دلوں میں دینی علوم کے راستے کو اتنا دشوار بنایا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پھانسیاں دی جاتی تھیں علماء کو تو وہ عوام الناس کے سامنے دی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، درختوں کے اوپر ان کو پھانسیاں دی جاتی تھیں اور بری بری سزائیں دی جاتی تھیں، تو اس کے ذریعے سے وہ اس راستے کو نا عوام الناس کے لیے بہت خوف اور خطرے والا راستہ بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ اپنی اولادوں کو اس راستے پر نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا. دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا کہ اس راستے کے اوپر جو دنیاوی یعنی سپورٹ کا ایک سسٹم مسلمان حکومتوں کے دور میں چلتا تھا، وقف کا سسٹم ہوتا تھا، اور حکومتیں جو ہیں وہ باقاعدہ مدارس کو سپورٹ کرتی تھیں، بیکاز یہی مدارس جو تھے، یہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھے، انہی کے اندر دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے اور انہی کے اندر دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جن سے کہ ملک کا نظام چلتا تھا. ٹھیک ہے، تو پوری حکومت فنڈنگ ہوتی تھی، حکومت ان کا ٹیک کیئر کرتی تھی، تو اس پورے کے پورے سلسلے کو نا انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو فنڈنگ رک گئی، مکمل طور پر فنڈنگ رک گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ جی اس لائن کے اوپر جو لوگ موجود تھے تو ان کا جو ہے وہ فائنینشیل سٹیٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور انسٹیٹیوشنس کے جو اکنامک حالات تھے، جو ان کے معاشی حالات تھے، یہ بہت زیادہ دگرگوں ہو گئے. ٹھیک ہے، تو عوام الناس کے دل میں نا پھر ان کی طرف اپنے اولادوں کو بھیجنے کی خواہش بھی جو ہے وہ کم ہو گئی کہ بھئی ہماری اولادیں اگر اس طرف جائیں گی تو پھر یہ کھائیں گی کہاں سے. ٹھیک ہے، ان کا کیا بنے گا، دنیا میں تو ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا عوام الناس نے اپنی اولادوں کو اس طرف بھیجنا چھوڑ دیا. اسپیشلی جن کے پاس کچھ دنیاوی علوم تھے یا دنیاوی اسٹیٹس تھا، انہوں نے تو بالکل ہی ختم کر دیا نا. تو رہ گئے آخر میں وہی غریب بیچارے. ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہیں اور بھیجنے کا، یا یہ کہ ان کے اندر ابھی بھی دینی حمیت اور غیرت اور دین سے محبت زندہ تھی، تو انہوں نے تو اپنی اولادوں کو پھر بھی بھیجا. وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے دنیا کی پرواہ کی، اس لیے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس ویسے بھی دنیا نہیں تھی، اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر کہ ان کے پاس پہلی دنیا نہیں تھی، غریب تھے نا. तो दुनिया तो पहले ही नहीं थी, तो इस वजह से वो अपने औलादों को भेजते रहे, लेकिन जो दुनियादार लोग थे उन्होंने भेजना छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वो पूरे की पूरी उम्मत के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा खलीज पैदा हो गया, खलीज पैदा हो गई, ठीक है, यानी दीनी उलूम वालों में और जो अवामुन नास थे, ठीक है, इनके दरमियान बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। इतना बड़ा गैप पैदा हो गया कि जो लोग दीन के कामों में लगे हुए थे वो जो जुबान बोलते थे, जिस टर्मिनोलॉजी में बात करते थे, उस टर्मिनोलॉजी को दूसरी तरफ वाले लोग बिल्कुल नहीं समझते थे, ठीक है, और दूसरी तरफ वाले जो बात करते थे अंग्रेजी जुबान में बात करते थे और साइंसेज वगैरह इस यानी उनकी एक अलग ही यानी स्टाइल था जिंदगी का, ठीक है, जो कि अंग्रेज छोड़ करके गए थे उनके दरमियान, ठीक है, तो वो जो जिंदगी थी ना वो मदारिस की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी थी, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान एक लंबी खलीज पैदा हो गई, और ना इधर वाले उधर की बात समझे ना उधर वाले इधर की बात समझे, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खैर दे, और अल्लाह ताला यकीन उनको बहुत ज्यादा नवाज ऑलरेडी नवाज रहा होगा जन्नतुल फिरदौस के अंदर, जन्नत के अंदर हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, ठीक है, उन्होंने जो अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में तरतीब डाली गई उसके जरिए से जो तबलीगी जमात की मेहनत शुरू करी ना, ये मेहनत बड़ी यूनिक मेहनत थी, ठीक है। ये मेहनत जो है वो यानी ये शक्ल तबलीग की या ये शक्ल दीनी मेहनत की ना पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के आज तक मौलाना इलियास तक के जमाने में ये जो तरतीब है ना, ये तरतीब के ऊपर दीन का काम नहीं होता था। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम होता था या उसके अंदर कोई कमी बेशी थी, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। इस बात को हम समझ लें अच्छी तरीके से, ये जो तरतीब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला ने शुरू करवाई ना, इस तरतीब की पहले जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि पहले हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ना हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके थे, ठीक है, इस खलीज की वजह से। ये खलीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तो ये जो खलीज थे ना इसको फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से पाटा कि तबलीगी जमात की मेहनत शुरू हुई, जिसका मकसद क्या था कि अवामुन नास को उनके घरों से निकाला जाए कुछ अरसे के लिए, 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, पूरे साल के लिए, ठीक है, और उनका जो रिश्ता है ना वो वापस मदारिस से, उलमा से और मशाइख से जोड़ा जाए, ठीक है। तो अवामुन नास गोया के मरीज की तरह हैं कि जो कि रूहानी मौत मर चुके हैं या मर रहे हैं, ठीक है, तो जब कोई इस तरह से रूहानी मौत यानी जो कोई इस तरह से मर रहा हो, राइट, और उसके ऊपर जो है वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर क्या करते हैं जी, जरा जरा बताएं क्या करते हैं ताकि आप भी साथ साथ चलें, आपकी भी सोच साथ साथ चले। घर के अंदर किसी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करते हैं आप? जी डॉक्टर साहब क्या करते हैं घर में कोई मर रहा हो? जरा सोचें, कभी ऐसा ऐसी कैफियत आई घर में किसी खानदान वाले के ऊपर? मरने देते हैं उसको या उसके सूरह यासीन पढ़ते हैं जी, और कलमा भी तो पढ़ते हैं, राइट, कलमा पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं और कहते हैं यार जाओ, राइट, और कुछ नहीं करते डॉक्टर साहब? और भी तो डॉक्टर लोग हैं, घर से बाहर इमरजेंसी में लेके जाते हैं, तो कैसे लेकर के जाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी में डाल के लेके चले जाते हैं या क्या करते हैं? कॉल करते हैं ना किसी को, ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका में अगर हो तो 911 को कॉल करते हैं, सऊदी अरब में हो तो पता नहीं क्या होता है, 999 होता है इधर, जो भी होता है उसको कॉल करते हैं, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस सर्विस आती है, मरीज को डालती है एम्बुलेंस के अंदर और लेके किधर जाती है? सड़कों पे घूमती नहीं रहती है, ठीक है, किधर लेकर के जाती है? अस्पताल लेकर के जाती है, ठीक है, किसी अच्छे प्रॉपर क्लिनिक में लेकर के जाती है जहां पे उसको उसका इलाज किया जा सके, ठीक है। तो ये जो तबलीगी जमात है ना इसकी हकीकत यही है एम्बुलेंस सर्विस की, ठीक है, ये उन लोगों को लेके जाती है जो कि खुद जाने के लिए तैयार नहीं होते या जिनके अंदर सिकत नहीं होती कि वो खुद जा सके, ठीक है, तो ये इनको घर पे आकर के खटखटाते हैं, ठीक है, खटखटा करके वो बाहर निकलता है अगर निकल आया, वरना तो बच्चों से कह देते हैं जी कह दो अब्बा घर पे नहीं है, राइट, लेकिन अगर अब्बा घर घर से बाहर निकल आए तो फिर ये उनसे वहीं पे बात करते हैं और फिर उनको कन्विंस करते हैं कि चलिए आप मस्जिद, और मस्जिद जाते हैं तो नमाज के बाद फिर तालीम में क्या कहते हैं कि जी चलें कुछ अरसे के लिए जरा हमारे साथ निकलें, ठीक ठीक है, 3 दिन के लिए निकलें, 40 दिन के लिए निकलें, तो ये जो 3 दिन 40 दिन के लिए निकलना होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फिराते रहें उनको रास्ते में, ठीक है, जूतियां चटखाते रहें रास्ते में फिराते रहें, बल्कि मकसद असल में ये होता है, और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का ये मकसद था, ठीक है, कि इनका जो है ना, इनके अंदर तलब पैदा की जाए, ठीक है, दीन का इल्म हासिल करने की तरफ पैदा की जाए, इनके अंदर ये एहसास पैदा किया जाए कि इनको दीन का कुछ नहीं पता है, इनकी जिंदगी दीन से कितनी दूर है, ये एहसास पैदा हो जाएगा ना, तो फिर इनको जोड़ दिया जाए, मदारिस से जोड़ दिया जाए, उलमा से जोड़ दिया जाए, मशाइख की खानकाहों से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये फिर ये इतने लंबे अरसे जो है ना, वो अवामुन्नास और मशाइख की खानकाह और उलमा के मदारिस, इनके दरमियान क्या कनेक्शन रह गया था, उम्मत के अंदर तबलीग जमात का कनेक्शन रह गया था, ठीक है, बस यही एक कनेक्शन था, गोया कि एक बहुत ही बारीक सा कनेक्शन था, ठीक है, और यानी ज्यादातर लोग जो है वो इससे इफेक्टेड नहीं थे, बहुत कम लोग इससे इफेक्टेड होते थे, बेशक इनकी तादाद जो है वो लाखों में जाती थी, लेकिन करोड़ों के मुकाबले में लाखों की तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, या हजारों की तादाद तो बहुत ही कम होती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इस दीन को दोबारा से जिंदा करना होता है, ये अल्लाह ताला की तरतीब है, ठीक है, तो फिर ये सिलसिला तबलीगी जमात का तो चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली फिर अल्लाह ताला की तौफीक से ऐसे लोग भी पैदा हुए कि जो के थे तो सेक्युलरली एजुकेटेड, ठीक है, दुनियावी तालीम याफ्ता थे, दुनियावी तौर पर उनको बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने दिया था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल के अंदर दीन की ऐसी मोहब्बत पैदा करी कि उन्होंने अपने दुनियावी मामलात के साथ साथ उन्होंने मदारिस में जाकर के, खानकाहों में जाकर के दीनी उलूम हासिल किए, अपना तस्किया किया, ठीक है, अल्लाह का जिक्र सीखा और माशाल्लाह आलिम बने और मुफ्ती बने, ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि जो दीनी उलूम और यानी दीनी जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें और ये जो दुनियावी सोसाइटी थी इनके दरमियान फिर से एक ज्यादा मोटा रब्त पैदा होना शुरू हुआ, ठीक है, अब इन लोगों ने वापस जाकर के ना वहां पर बातें करनी शुरू करी, मदारिस के बारे में बताया और मशाइख के बारे में बताया और उलमा के बारे में बताया, और इस तरीके से ना ज्यादा लोगों को फिर लेकर के आए इस तरफ, ठीक है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कम अज कम 20-30-25 साल से जो है ना ये फिनोमेना जो है वो बड़े जोर और शोर के साथ जारी है, ठीक है, तो अब ये मामला ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्मत के अंदर कि बहुत बड़ी तादाद में दुनियावी तौर पर एजुकेटेड और क्वालिफाइड किस्म के लोग जो हैं वो अब दोबारा से दीन के उलूम की तरफ आ गए हैं और आ रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है ना दीनी उलूम पढ़ना जो है वो एज इफ ऐसा लगता है कि ये बड़ा यानी आम हो गया, हत्ता कि जैसे इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए दीनी उलूम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो अब जो है ना ये मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, लेकिन शैतान जो है वो हार तो नहीं मानता ना, और वो जो है वो काम करना छोड़ तो नहीं देता ना, तो फिर जब वो ऐसा मामला होता है ना कि जी वो कहीं पे किसी फ्रंट के ऊपर फेल हो जाता है, तो फिर वो दूसरे फ्रंट के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और उसका दूसरा फ्रंट कब क्या होता है कि जब वो दीन से दूर रखने में कामयाब नहीं होता तो फिर वो क्या करता है कि दीनी काम के अंदर ही फिर जो है ना वो नीयत की खराबी के ऊपर काम करता है, ठीक है, तो इस वक्त ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे भी हों कि जो कि दीन का इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन मकसद जो है ना वो आखिरत की रजा, आखिरत की कामयाबी नहीं होगी बल्कि जो है वो दुनिया के अंदर जैसा कि उन मशायख को इज्जतें मिलती हैं और उनको मुकाम मिलता है, लोग आगे पीछे फिरते हैं, लोग बड़ी उनकी वाह वाह करते हैं, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, तो हमें भी इस किस्म का मुकाम मिल जाए, हम भी ऐसे लोग बन जाए, ठीक है, जैसे कि मशायख हैं या उलमा हैं, ठीक है, तो दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ठीक है, ये आज के दौर में इसके चांसेस ज्यादा नजर आते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस गलत नीयत से और बदनीयत से बचाए, हमें तो अपना काम करते रहना है और नीयत को अपने दुरुस्त रखना है, ठीक है, वरना अगर हम ये चीजें आपको क्यों बताई हैं सारी की सारी, क्योंकि अगर हम मदारिस की तरफ जाकर के देखें ना तो मदारिस के अंदर जो लोग दीनी उलूम हासिल कर रहे होते हैं ना उनको तो दुनिया नहीं मिल रही होती है, ठीक है, तो उनको तो बेचारे यानी बहुत ही बुरे हालात के अंदर ज्यादातर, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं जो है वो यानी दुनिया भी साथ मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर तो जो उलमा होते हैं, मशायख होते हैं, मदारिस के तलबा होते हैं, वो तो दूसरों के मुकाबले में तो उनके दुनियावी हालात बड़े ही खराब होते हैं, ठीक है, तो उस तरफ तो इसके चांसेस कम है कि वो दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं दुनिया कमाने के लिए, लेकिन इस तरफ इसके चांसेस ज्यादा हैं, तो इस वजह से सारी तफसील आपके सामने बयान करी, तो ये एक اور حالت بیان فرمائی. دوسری فرمائی کہ یعنی اس کے بعد فرمائی حکمرانی اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب سے زیادہ نکمے ہوں، یعنی بدذات، لالچی اور بد اخلاق ہوں، اور جو جس کام کے لائق نہ ہوں وہ کام ان کے سپرد ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ہم سب نے آلریڈی پی ایچ ڈی بلکہ ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم لوگوں کا بہت فیوریٹ پاس ٹائم ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے صفات گنوانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے چلتا ہوں. ظالموں کی تعظیم اس خوف سے کریں کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی کی عزت کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے مل رہے ہیں صرف اس وجہ سے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارا دشمن بن جائے گا اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نہ ذلیل کرے گا یا اذیت دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات بھی بہت آج کے دور کے اندر عام ہو چکے ہیں. شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی صرف نان مسلم کنٹریز کے اندر نہیں بلکہ بدقسمتی سے مسلمان معاشروں میں، مسلمان کنٹریز کے اندر، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ کے نام کے مسلمان کنٹریز ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، وہاں پہ آپ کو بہت سارا ایسا معاملہ ملتا ہے کہ شراب جو ہے نا وہ اگر اوپر سے بین ہو بھی پھر بھی جو ہے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ جس کو پاکستان کے ہی ایک ایئرپورٹ کے اوپر جب ہم نے لینڈ کیا تو کسٹمز کے پاس انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز ان کو دیکھنی تھی جو انہوں نے روک لیا، تو میں کھڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ جہاں پہ وہ اسکینر ہوتا ہے نا جس سے کہ سارے لوگوں کے بیگز گزارے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک ڈھیر لگا ہوا تھا الکوہل لیکور کی بوتلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یعنی ایک ہر قسم کی وہاں پہ نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو رہا تھا، یہ لوگ لے کر کے آ رہے تھے باہر سے اور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کراس کر کے نا لے جائیں، لیکن وہاں پہ لگتا ہے اس وقت کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوگا ایسا کہ یا تو کوئی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا یا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے صاحب جو انہوں نے کہا کہ جی ذرا اس ذریعے سے کچھ کماتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہو اس کو کانفسکیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ چیز جو کہ پکڑی گئیں، جو نہیں پکڑی جاتی ہیں وہ تو پھر ان کی کوئی، لیکن بہرحال پکڑی جائیں یا نہ پکڑی جائیں شراب تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شراب بنانا کوئی راکٹ سائنس ہوتا نہیں ہے، تو یہاں پر شراب بنانا یا شراب بیچنا از ناٹ دا پرابلم. بیکاز اگر آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں نا تو مسلمان معاشرے کے اندر شراب پینے کے معاملات جو ہیں وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کو کہ شراب پینے کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی گئی. ٹھیک ہے، وہ حدیث مشہور ہے نا کہ شراب پینے پہ حد جاری کی گئی اور پھر کسی نے ان کو برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس کو برا بھلا نہ کہو. ٹھیک ہے، اس کو جو حد لگ رہی ہے تو اس سے اس کا یہ گناہ معاف بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے نا وہ کوئی آرڈیننس پاس کر دینے سے دین نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی شراب لوگ پیتے تھے اور اس کا گناہ ہوتا تھا، اور گناہ کے اوپر جب پکڑے جاتے تھے تو سزا ملتی تھی. ٹھیک ہے، تو اوپر سے ہم آرڈیننس نافذ کر دیں کہ جی یہ چیز حرام ہے، لیکن اندر جو ہے وہ معاملہ ایسا ہو کہ جی جو چاہے وہ پیے، تو اس سے تو کام نہیں چلتا. تو بہرحال یہاں پہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر نا یہ پینا پلانا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، کثرت ہو جائے گی. پہلے کثرت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اب کثرت ہو جائے گی. ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، تو ٹی وی نہ کر کے تو جو رہی صحیح کثر رہ گئی تھی تو اس کو بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر پورا کا پورا وہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو کہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو پہلے چھپ چھپا کر کے جانا پڑتا تھا، اب وہی معاملہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے. اس میں تو یعنی پہلے تو باقاعدہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا تھا، اب تو موبائل فون ہی جو ہے وہ موسیقی کا آلہ ہے. پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آخری علامت بتائی کہ پرانے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، یعنی جو نیک لوگ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کچھ آتا نہیں تھا اور انہوں نے سارا بگاڑ کیا ہے اور انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے وہ غلط کیا. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو خاص طور پر مخالفین جو ہیں وہ ایک سے ایک آج کے دور کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی علامت جو ہے وہ آج کے دور میں پکی پوری ہو چکی. تو ایسے وقت میں تم لوگ سرخ آندھی آنے، آسمان سے پتھر برسنے، صورتیں بدل جانے اور ایسی آفتوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آنے لگیں گی جیسے بہت سے دانے کسی دھاگے میں پرو رکھے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگیں. ٹھیک ہے، जो नेचुरल डिजास्टर्स की एक ना खत्म होने वाली जो चेन बंधी हुई है आज के दौर के अंदर, किसी साल के अंदर ये बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये साफ जाहिर है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये आते तो किसी ना किसी फिजिकल फिनोमिना की वजह से हैं, लेकिन फिजिकल फिनोमिना को ट्रिगर करना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का काम होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी किस्म का डिजास्टर जो है वो नहीं आ सकता। ये निशानियां भी आई हैं कि दीन का इल्म कम हो जाएगा, झूठ बोलना हुनर समझा जाएगा, अमानत का ख्याल दिलों से जाता रहेगा, हया और शर्म जाती रहेगी, हर तरफ काफिरों का गलबा हो जाएगा, नई नई गलत सलत बातें ईजाद होने लगेंगी। ठीक है, इसकी भी तफसील की जरूरत नहीं है, सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस वक्त मुल्क शाम में एक शख्स पैदा होगा जो सैयदों का खून करेगा। सैयदों का जो लफ्ज उन्होंने, अच्छा अब यहां से जो है ना, इस वक्त मुल्क शाम में, ठीक है, अब ये जो है ना, ये गोया के यानी सिर्फ अलामात नहीं है, पीछे तो अलामात थी ना जो कि मुख्तलिफ शक्लों में बड़ी वाइड स्प्रेड होंगी, बड़ी कसरत के साथ होंगी, ठीक है, तो वो एक अलग नौयत की अलामात है। अब यहाँ पर जो है ना गोया के जिसको कहते हैं ना यानी वाकयात और इवेंट्स जिनको कहते हैं कि एक चीज वकू पजीर हुई फिर उसके बाद दूसरी चीज वकू पजीर हुई, ठीक है, तो ये अब गोया के वाकयात शुरू हो गए। ठीक है, तो मुख्तलिफ हदीस की किताबों के अंदर से इन्होंने इकट्ठी करके ना इन चीजों को एक रब्त के अंदर लिख दिया है। ठीक है, तो हदीस की किताब में तो बहुत सारी हैं, सिर्फ सहाय सित्ता नहीं है, सिर्फ बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ नहीं है, बल्कि यानी नौ किताबें तो हदीस की जो बड़ी असा समझी जाती हैं, तो वो तो हमारे मदारिस के अंदर बाकायदा पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी हदीस की किताबें जिनके अंदर सारी नहीं तो बहुत सी सही हदीसें उनके अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन उलमा ने, क्योंकि ये जो तफसील है ना, अब यहाँ पर ये तफसील जो है वो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो ओरिजिनल बहश्ती जेवर थी उसके अंदर इतनी सारी तफसील नहीं थी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली काम किया है, तो फिर ये जो तस्हील जिन उलमा ने मरतब करी है, जो कि जामतुल रशीद कराची के उलमा हैं और मुफ्ती अबुल लुबाबा शाह मंसूर दामबरकातहुम उनके गोया के इंचार्ज के तौर पर थे, तो उन्होंने फिर ये सारी की सारी तफसीलात जो है ना वो फिर यहाँ पर हदीस की किताबों से निकाल निकाल करके लिखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात पहले जरा, इसलिए कि अब तो एक कहानी शुरू होने वाली है ना बहुत लंबी चौड़ी, तो उससे पहले ही आपके सामने एक बात रख देता हूँ कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी हाँ जो अभी ये वाकया हुआ वो वही है जो कि हदीस में आया। ठीक है, तो बज़ाहिर लगने से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है, तो ये सारी जो बातें हैं ना ये सब इहतमाल के दर्जे में है, पॉसिबिलिटी के दर्जे में। ठीक है, 100% श्योरिटी जो है वो यूजुअली किसी भी बात के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने ज़माने के अंदर ना समझा है कि ये जो इवेंट हुआ तो ये वही इवेंट है जो कि हदीस में आया है। ठीक है, लेकिन पता लगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ और भी होना था जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से वो इवेंट जिसके बारे में लोग समझे थे कि ये वही इवेंट है जो हदीस में आया है, तो वो इवेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ना लोग जब सिचुएशन के अंदर घिर जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे बस वक्त आ गया। ठीक है, लेकिन इसका तायुन जो है वो हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वक्त ही बताएगा कि जी कौन सा वाकया वाकई वही वाकया था जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। ठीक है, तो यूजुअली हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाते हैं कि असल में ये एक्साइटेड होने की बात नहीं है का मुकाम नहीं है, बल्कि ये फिक्रमंद और परेशान होने का मुकाम है, अपनी दीन के बारे में अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद होने का मुकाम है। ये खुश इस तरह से नहीं होने का मुकाम है कि जी वाकई अच्छा अब तो वो वक्त आ गया, आप तो जी दुश्मन मर जाएंगे और हम गालिब आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह ये कुछ पढ़ करके भी थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा कि ये इतना आसान नहीं है जैसा कि हम समझना चाहते हैं। तो इस वक्त मुल्क शाम में एक शख्स पैदा होगा जो सैयदों का खून करेगा। सैयदों से मुराद जो होती है सादात होती है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो डिसेंडेंट्स कहलाते हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कजन्स मुसलमान थे या चाचा जो मुसलमान थे, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है, हजरत अकील रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे एक कजन थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा एक कजन थे। ठीक है, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हा की फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा और भी शादियां थी, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हा की औलादें भी जो हैं वो फिर बनी हाशिम के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो सादात घराना जो है वो فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولادیں یعنی امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آگے اولادیں وہ کہلاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سید کا لفظ ہے نا وہ سادات گھرانے کے لیے استعمال, یعنی وہ بنی ہاشم کے سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو کہ وہ یعنی زکوٰۃ دینا منع ہے اور اس طرح کی جو چند باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو سیدوں کا خون کرے گا یعنی ان کا مخالف ہوگا, ان کا دشمن ہوگا. مصر و شام میں اس کا حکم چلے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ عالم کون ہے یہ بندہ, ٹھیک ہے, جس کا کہ حکم دونوں ملکوں کے اندر چلے گا. اچھا, شام سے بھی مراد جو ہے وہ آج کل جو شام کا ملک ہے نا وہ ٹریڈیشنلی یہ صرف شام نہیں تھا, بیکاز شام کا جو ایریا ہے یہ گویا کہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہسٹوریکلی جو ہے نا وہ جو ایریاز کے نام تھے, ٹھیک ہے, یعنی جو علاقے تھے وہ کیا تھے, ایک تو حجاز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نجد کا علاقہ یہ جہاں پہ کہ یعنی ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے قصیم وغیرہ سب یہ نجد میں آتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ عراق, یہ عراق جو ہے وہ یہ یعنی بہت پرانی ہسٹری سے جو ہے عراق موجود ہے. ٹھیک ہے, تو عراق کے بعد جو علاقہ آتا تھا وہ علاقہ جو ہے یعنی ویسٹ ورڈز عراق سے مغرب کی طرف وہ شام کا علاقہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور شام کے بعد جو علاقہ مغرب کی طرف آتا تھا نا جو کہ ہسٹوریکلی ایگزسٹ کرتا ہے وہ فلسطین کا علاقہ ہے. یہ فلسطین جو ہے وہ کوئی نیا نام نہیں ہے, یہ بھی پرانا نام ہے. ٹھیک ہے, البتہ اردن وغیرہ جو ہے یہ کنٹری کے جو نام اب موجود ہیں تو یہ غالباً پہلے بھی شام میں آتے تھے. تو شام جو ہے نا یہ جزیرۃ العرب کے بعد جو شمال کی طرف جو علاقہ ہوتا تھا تو شمال کی طرف والے علاقے کو جو ہے وہ شام کہا جاتا ہے, یا شمال, اصحاب الشمال اور شام جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مصر جو ہے وہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, وہی علاقہ جو کہ اب مصر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر فرعون کی حکومت ہوتی تھی. ویسے تو یہ لفظ جو ہے مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر, ٹھیک ہے, لیکن یہ فکس ہو گیا خاص اس علاقے کے لیے جو کہ دریائے نیل کے ارد گرد بسا تھا اور بہت پرانے زمانے سے, تو یہ سب کا سب جو ہے مصر کہلاتا ہے. تو شام, مصر اور عراق اور حجاز اور نجد, یا نجد اور حجاز اور اس کے جو پورا علاقہ ہے سب کو ملا کر کے جزیرۃ العرب یہ پہلے سے موجود تھا اور حدیث میں جزیرۃ العرب کا نام بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اس کا مصر و شام میں اس کا حکم چلے گا. جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی اس وقت سب ملکوں میں عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی. اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے, روم کا مسلمان بادشاہ, ٹھیک ہے, اب روم کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, روم ویسے تو ہم جانتے ہیں رومنز جن کو کہتے ہیں, وہ ہم یورپینز کو بطور روم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی رومنز جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ رومی جو لوگ ہیں نا یہ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے, اسحاق یعنی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے بیٹے تھے, ایک تو اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ٹھیک ہے, دوسرے جو ہے وہ اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو رومنز جو ہے نا ان کا شجرہ نسب اوپر جا کر کے اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے وہ دو بیٹے تھے, ایک یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ٹھیک ہے, دوسرے ایک اور بھی تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے, یا دو سے ہو سکتے زیادہ بھی ہو, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا نا وہ اسرائیل تھا. ٹھیک ہے, تو ان کی جو اولادیں ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو والد تھے اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو اولادیں ہیں ان میں بنی اسرائیل بھی شامل ہو جائیں گے, ان کے اندر ان کے علاوہ بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو رومنز جو ہے نا یہ رومنز کے اندر وہ جو ایک مشہور شخصیت تاریخ میں ملتی ہے, سب سے زیادہ مشہور شخصیت جس کو کہ اس سکندر اعظم کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, الیگزینڈر دا گریٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ یہ بنی اسحاق میں سے تھا. اس کا پورا شجرہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہ اوپر جا کر کے حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے. فار ایگزامپل آپ یورپینز میں اگر دیکھیں تو بوسنیا از پارٹ آف یورپ, البینیا از پارٹ آف یورپ, اور کوسوو از پارٹ آف یورپ. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ترکی کا علاقہ ہے تو ترکی کے اندر جو ہیں وہ ترک بھی ہیں, ترکیوں نسل. ٹھیک ہے, جو کہ جن کا کہ نسب کہاں سے ملتا ہے, ان کا نسب سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے یعنی ایسٹ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ترکی کے اندر صرف ترک لوگ نہیں ہیں, बल्कि तुर्की के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जिनका कि शजर नसब जो है वो यूरोप से जाकर के मिलता है, ठीक है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो अल्लाह आलम कौन लोग मौजूद, ये कौन है जिसका कि यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है। बहरहाल रोमी मुसलमान जो हैं वो अभी बज़ाहिर तो हमें ऐसे कोई क्लियरली नज़र नहीं आते कि कौन सा रोमी मुसलमान का बादशाह होगा। बहरहाल लोग कह सकते हैं, आजकल बड़े लोग एक्साइटेड हुए हैं कि तुर्की के अंदर माशाल्लाह एक बज़ाहिर लगता है कि नेक आदमी है, ठीक है। लेकिन वही बात दोबारा करूंगा कि कुछ पता नहीं है, कोई हतमी बात नहीं है ये, ठीक है। तो एहतमाली दर्जे में हम लोग बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है एग्जैक्टली। तो रोम के मुसलमान बादशाह की ईसाइयों की एक जमात से लड़ाई होगी और ईसाइयों की दूसरी जमात से सुलह हो जाएगी, ठीक है। अब ईसाइयों की एक जमात क्या है, दूसरी जमात क्या है, इसका भी कुछ हमें कंफर्म पता नहीं है। लेकिन अगर आप ईसाइयों को आज के दौर में देखें, तो अगर आप बड़ी बड़ी मेजर जमातें देखें ईसाइयों के अंदर, तो दो बड़ी जमातें नजर आएंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी जमातें? एक है कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स जिनको कहते हैं, ठीक है, और ये मजहब की बुनियाद पर जमाते हैं, ये कोई रंगो नस्ल की बुनियाद पर जमात नहीं है, मजहब की बुनियाद पर। तो ये रोमन कैथोलिक जो है ये पूरा एक अलग बहुत डिफरेंट ईसाइयत है, ठीक है। और इसके मुकाबले में एक दूसरी ईसाइयत है जिसको कहते हैं रोमन ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है रोमन कैथोलिक के मुकाबले में, ठीक है। तो हो सकता है अल्लाह आलम ये दो जमातें हों, हमें क्या मालूम, सही है। तो एक जमात से जो है इसकी इसकी सुलह हो जाएगी, दूसरी जमात जो है वो इसके खिलाफ होगी, ठीक है। तो दुश्मन जमात होगी वो शहर कुस्तुनतुनिया पे चढ़ाई करके कब्जा कर लेगी। अब कुस्तुनतुनिया जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वही कुस्तुनतुनिया है जो कि उस जमाने से आज तक चला आ रहा है, ठीक है, जिसको आज क्या कहते हैं ये इस्तंबुल कहते हैं ना इसको, तो कब्जा करेगी वो बादशाह अपना मुल्क छोड़ करके शाम के मुल्क में चला जाएगा। यानी कुस्तुनतुनिया जो है ना ये शाम का हिस्सा नहीं था, ठीक है, ये जो है वो यानी रोमियों के पास था ये, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ये जो था वो रोमियों का कैपिटल था इस्तंबुल कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो इसको फिर नबी सल्लम की बाकायदा हदीसें वार कहे कि जो इसको फतह करेगा वो बेहतरीन बादशाह होगा और वो जन्नत में वो लश्कर जो है वो जन्नती होगा, ठीक है। तो ये रोमन यानी ये जो है ना वो ईसाइयों के कब्जे में पहले था, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो फिर वो छोड़ करके ना शाम के मुल्क में चला जाएगा, यानी जो शाम इसके ईस्ट में है या साउथ में है, ठीक है। ईसाइयों, अच्छा, ईसाइयों की जिस जमात से सुलह हुई थी उसको अपने साथ शामिल करके फिर उस दुश्मन जमात से भरपूर लड़ाई करेगा और इस्लाम के लश्कर को फतह होगी, ठीक है। यानी ईसाइयों के साथ के एक ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इत्तेहाद है ये नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह जो हैं ये जायज हैं और ये हमेशा से होती आ रही हैं और आगे भी होंगी। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी यहूदियों के साथ सुलह का मुआहदा हुआ था, ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स के साथ के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ भी सुलह के मुआहदे हुए थे। हत्ता कि ये भी मुआहदे का हिस्सा था कि जी अगर कोई लड़ाई हुई तो तुम हमारा साथ दोगे, ठीक है। सुलह ये था ना कि जी यहूदियों का ये जो जो कबीला है ये मुसलमानों के साथ था और दूसरा कबीला जो था वो मुशरिकीन मक्का के साथ था, ठीक है, और यही था कि जी हम साथ मिलकर के फिर अपना दिफा करेंगे, ठीक है। तो ये अलायंसेस जो हैं वो कोई गैर इस्लामी चीज़ नहीं है, ठीक है, एज लॉन्ग एज के इसकी वजह से आप अपने अकायद को कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। और ये तफसीर सूरह काफिरून की तफसीर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ भी हजरत ने वहां पर मारफुल कुरान के अंदर सूरह काफिरून की तफसीर के अंदर, आप उसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ईसाइयों की जमात से सुना, अच्छा, उस जमा दुश्मन जमात से भरपूर लड़ाई करेगा और इस्लाम के लश्कर को फतह होगी। एक दिन हलीफ ईसाइयों में से, यानी जो मुसलमानों के साथ जमात थी ईसाइयों की, उनमें से एक शख्स जो है वो एक मुसलमान के सामने कहेगा, कहने लगेगा कि हमारी सलीब की बरकत से फतह हुई, ठीक है। तो वो मुसलमान उसके जवाब में कहेगा कि नहीं, इस्लाम की बरकत से फतह हुई, ठीक है। तो ये बात बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ तक कि दोनों अपने अपने मजहब वालों को पुकार कर जमा कर लेंगे और आपस में लड़ाई होगी, इसमें इस्लाम का बादशाह शहीद हो जाएगा, ठीक है, और शाम के मुल्क में भी ईसाइयों की अमलदारी हो जाएगी और ये ईसाई उस दुश्मन जमात से सुलह कर लेंगे, ठीक है। यानी दो जो जमातें थीं पहले अलग अलग थीं, अब ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगी। अच्छा, बचे खुचे मुसलमान फिर मदीना मुनव्वरा को चले जाएंगे और खैबर तक ईसाइयों की हुक्मरानी हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त मुसलमानों को फिक्र लाहिक हो जाएगी कि हजरत मेहदी को तलाश करना चाहिए ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे, اس وقت حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈر سے کہ کہیں لوگ حکومت قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کریں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت مہدی کو تلاش میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور بعض لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل بھی آپ کو بہت سے ایسے نظر آتے ہیں جو کہ مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ابھی بھی بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انڈیا کے اندر بھی شکیلی، یہ جو شکیل بن حنیف کا نام بہت آج کل مشہور ہو رہا ہے کہ اس نے جی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے پتہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو دعوے تو پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بھی چند لوگوں نے کیے ہیں آج کل کے دور کے اندر ہی مختلف علاقوں میں، لیکن ان کی تعداد ابھی بھی بہت کم ہے۔ تو اس زمانے میں نا اور بھی لوگ دعوے کریں گے، وہ دیکھیں گے نا کہ جی اب حالات ایسے بن رہے ہیں تو اب تو یہ تو یعنی پرائم ٹائم ہے جی دعویٰ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو مہدی علیہ السلام کی کیا سب سے بڑی علامت، علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی علامت ہی ان کی یہ ہوگی کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دعویٰ نہ کرنا جو ہے نا ان کی علامت ہوگی۔ اب ایسے لوگوں سے تو صبر نہیں ہوتا نا کہ جی صبر کر کے بیٹھے ہیں کہ لوگ ان کو تلاش کریں اور مہدی بنا لیں اپنا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے تو یہ صبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے تو نیت ہی خراب ہوتی ہے اور ویسے ہی ایمان نہیں ہوتا ان کے اندر، تو پھر وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی بولیں یا کیا کہیں کہ ایسے لوگ ہر ایک کو مل جاتے ہیں جو کہ اس کے دعوے کو پھر قبول بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مزے کی تو یہ بات ہے، یہ نہیں کہ وہ دعویٰ کرنا اتنا عجیب بات نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ سے رہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دعوے کے اوپر یقین کر لینا اور پیچھے لگ جانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ورنہ ہمیں بھی کوئی اپنے بارے میں خوش فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم تو بڑے عقل مند ہیں اور وہ لوگ بیوقوف ہیں، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اچھا، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ حکومت کو روح قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کریں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ولایت کے درجے کو پہنچتے ہیں، یہ ولایت کی پھر تفصیلات ہیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی جو گناہوں سے مکمل طور پر بچ جاتا ہے نا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حدیثوں کے اندر نا ولایت کے درجوں کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو سب سے اونچے درجے کے ولی ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں یعنی حدیث موجود ہے کہ یہ اس کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک ابدال جو ہوتے ہیں وہ بالکل یعنی ٹاپ کے ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے دو ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 40 ابدال دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کر دیتے ہیں اس کی جگہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے وہ نمبر جو ہے نا وہ 40 ہی رہتا ہے، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ شام میں موجود ہیں اور یمن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جو ہیں وہ ان کے علاوہ دوسرے علاقوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کسی کو نا آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ابدال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جی اگر دعویٰ کر دیا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتے، اور دعویٰ کے علاوہ یہ کہ آپ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ ان میں سے ابدال کون ہے۔ ہاں ولایت کا تو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو ولایت کا چھوٹا درجہ تو اس طرح سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیں تو ولایت صغرا کا درجہ حاصل کرنا جو ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے کے جو ولی ہوں گے نا وہ جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں یعنی بالکل ہائیسٹ لیول کے مقام کے جو ولی ہوں گے تو وہ سب حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض حضرت مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ابدال کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی ولایت کے اتنے اونچے درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نا بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی مادے کے پار دیکھنے کی بھی صلاحیتیں ایسے لوگوں کو اپنی محنتوں کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر نا پہچان یعنی پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، فرقان ان کو عطا ہو جاتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرما دیں گے،
ठीक है, तो ये लोग जो है ना फिर उनको पहचान लेंगे और इसरार करके उनको हाकिम बनाने के लिए उनके हाथ पर बैत कर लेंगे, और इसी बैत में एक आवाज आसमान से आएगी जिसको वहां मौजूद सब लोग सुनेंगे। वो आवाज ये होगी कि अल्लाह ताला के खलीफा यानी हाकिम बनाए हुए हजरत मेहदी हैं और हजरत मेहदी के जहूर से, ठीक है, तो इस तरह से उनकी अश्योरेंस मिलेगी। अच्छा, उस वक्त जो है सुना है हमने अपने बुजुर्गों से कि जो लोग वहां मौजूद होंगे ना उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे आज के दौर के अंदर हजारों लाखों लोग जो है वो हज पे होते हैं और हजारों लोग जो है वो तवाफ के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसा उस वक्त नहीं होगा, बल्कि बहुत कम लोग होंगे, इसलिए कि उस वक्त जो है वो हालात इतने खराब हो चुके होंगे कि इतना आसान नहीं होगा हज करना और तवाफ करना और सब कुछ। तो और स्पेशली ये जो उनके हाथ पे बैत करेंगे इनके बारे में उलमा ने लिखा है कि 313 ओनली, ठीक है, इतने लोग होंगे उस वक्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर कुल 313 ही लोग मोमिन होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो वो 313 होंगे जो कि इस लेवल के लोग होंगे जो कि उनको तलाश करते हुए वहां पे पहुंचे होंगे, ठीक है। अच्छा, सब अच्छा, गर्ज हजरत मेहदी खाने का, हाँ ये तो हो गया ना, हजरत मेहदी के जहूर से क्यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी, जब आपकी बैत का वाकया मशहूर होगा तो मदीना मुनव्वरा में जो फौज मुसलमानों की होंगी वो मक्का मुकरमा चली आएंगी और मुल्क शाम, इराक, यमन के अब्दाल और औलिया सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और भी अरब की बहुत सी फौजें इकट्ठी हो जाएंगी। जब ये खबर मुसलमानों में मशहूर होगी एक शख्स खुरासान से हजरत मेहदी की मदद के लिए एक बड़ी फौज लेकर चलेगा जिसके लश्कर के आगे चलने वाले हिस्से के सरदार का नाम मंसूर होगा। अब इसी मौके पर जबकि यहाँ पर ये सारे वाकयात हो रहे होंगे ना उससे उसी वक्त जो है ना मशरक में यानी जो खुरासान का इलाका ट्रेडिशनली कहलाता है वहां पर भी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और इसके बारे में भी कई हदीसें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगरचे इन हदीसों का उन्होंने उन हदीसों का तस्करा नहीं किया है लेकिन उन वाकयात का जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि फिर वहां पर कामयाबियां हासिल करने के बाद लोग जो है ना वो इस तरफ चलेंगे, तो उसका तस्करा उन्होंने किया है कि जिसके लश्कर के आगे चलने वाले हिस्से का नाम के सरदार का नाम मंसूर होगा, ठीक है, और जो उसका सरदार होगा ना यानी इस लश्कर का जो सरदार होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम आया है हारिस, ठीक है, हारिस, और हारिस जो है ये हो सकता है कि उसका वाकई नाम हो, ये प्रॉपर नेम जिसको कहते हैं, या हो सकता है कि हारिस का जो मतलब है ना वो हो, यानी कि वो जो बंदा है ना वो हारिस पेशे का होगा। हारिस कहते हैं किसान को, ठीक है, फार्मर, किसान, ठीक है, तो या तो उसका पेशा हारिस का होगा या उसका वाकई नाम भी हारिस होगा, हो सकता है, ठीक है। बहरहाल उसका जो लश्कर होगा उसके अगले हिस्से के सरदार का नाम मंसूर होगा। वो रास्ते में बहुत से बददीनों का सफाया करता हुआ जाएगा। जिस शामी शख्स का ऊपर जिक्र आया कि सैयदों का दुश्मन होगा, चूंकि हजरत मेहदी भी सैयद होंगे, वो शख्स हजरत मेहदी से लड़ने के लिए एक फौज भेजेगा। हजरत मेहदी जो हैं वो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला उनकी औलाद से होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी मुशायख ने एक नुक्ता लिखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने हक की खातिर कुर्बानी दी और उन्होंने बहुत आगे बढ़ करके बाकायदा यानी इकदाम किया, कदम उठाया, ठीक है, तो उनका मुकाम जो है वो यानी कुर्बानी देने वालों में और यानी गोया के लड़ने वालों में आया, हक की खातिर लड़ने वालों में, ठीक है। लेकिन जो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, तो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी बजाय उन्होंने विड्रॉल का रास्ता इख्तियार किया, ठीक है, उन्होंने हुकूमत हवाले कर दी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ठीक है, और खुद जो है वो यानी दूसरे काम में लग गए, ठीक है, और इस काम को उनके हवाले कर दिया कि अभी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ क्यों हो, ठीक है। तो मशाइख ने ये बात अजीब फरमाई कि जितने उम्मत में औलिया गुजरे हैं ना, ठीक है, वो औलिया जो हैं वो हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला की औलाद में से, ठीक है, सादात औलिया, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सादात ही औलिया हो सकते हैं, ठीक है, जो भी मेहनत करेगा वो वली बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सादात में से औलिया गुजरे वो फरमाया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के औलाद में से गुजरे, ठीक है, लेकिन तमाम औलिया के जो सरदार होंगे ना, तमाम औलिया के सरदार हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला, राइट, वो जो है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के औलाद में से होंगे, ठीक है। तो किसी से सुना था कि उन्होंने चूंकि दीन की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी और अपने आप को जो है वो अलग कर लिया था, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर ये मुकाम अता फरमाया कि उनकी औलाद में से मेहदी को रखा। अच्छा, जब ये फौज मक्का और मदीना के दरमियान के जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी, तो ये सब के सब जमीन में धंस जाएंगे। सिर्फ दो आदमी बच जाएंगे, जिनमें से एक तो हजरत मेहदी को जाकर खबर देगा और दूसरा उस शामी को खबर पहुंचाएगा। ईसाई हर तरफ से फौजें जमा करेंगे और मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करेंगे। इस लश्कर में इस रोज 80,000 झंडे होंगे और हर झंडे के साथ 12,000 आदमी होंगे, कुल 9,60,000 आदमी होंगे। हजरत मेहदी मक्का से चलकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाएंगे और वहां रसूल सल्लम के रोज़े मुबारक की ज्यारत करके शाम की तरफ रवाना होंगे और शहर दमिश्क तक पहुंच जाएंगे कि दूसरी तरफ से ईसाइयों की फौज मुकाबले में आ जाएगी। हजरत मेहदी की फौज तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक हिस्सा तो भाग जाएगा, एक हिस्सा शहीद हो जाएगा और एक हिस्से को फतह होगी। ठीक है, इस शहादत और फतह का किस्सा ये होगा कि हजरत मेहदी ईसाइयों से लड़ने के लिए लश्कर तैयार करेंगे और बहुत से मुसलमान आपस में कसम खाएंगे कि फतह किए बगैर नहीं हटेंगे। बस अक्सर मुसलमान शहीद हो जाएंगे, सिर्फ थोड़े से बचेंगे जिनको लेकर हजरत अपने लश्कर में चले आएंगे। अगले दिन फिर इसी तरह होगा कि कसम खाकर जाएंगे और थोड़े से बचकर आएंगे। तीसरे दिन भी ऐसे ही होगा। आखिर चौथे दिन ये थोड़े से आदमी मुकाबला करेंगे और अल्लाह ताला उनको फतह देंगे। फिर काफिरों का हौसला टूट जाएगा। इसके बाद हजरत मेहदी मुल्क का बंदोबस्त शुरू करेंगे और हर तरफ फौजें रवाना करेंगे और खुद इन सारे कामों से निमट कर कुस्तुनतुनिया फतह करने को चलेंगे। जब दरियाए रोम के किनारे पर पहुंचेंगे तो बनू इसहाक के 70,000 आदमियों को कश्तियों पर सवार करके इस शहर को फतह करने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो बनू इसहाक का बाकायदा इस तरह से तذکرہ भी आया। जब ये लोग शहर की फसील के मुकाबल पहुंचेंगे तो अल्लाह अकबर बाआवाज़ बुलंद कहेंगे। इस नाम की बरकत से शहर पनाह की सामने की दीवार गिर पड़ेगी और मुसलमान हमला करके शहर के अंदर घुस जाएंगे और कुफार को कत्ल कर देंगे और खूब कत्ल अदल व इंसाफ से मुल्क का बंदोबस्त करेंगे। हजरत मेहदी से जब बैत हुई थी उस वक्त से इस फतह तक 6 साल या 7 साल की मुद्दत गुजरेगी। हजरत यहाँ के बंदोबस्त में लगे होंगे कि एक झूठी खबर मशहूर होगी कि शाम में दज्जाल आ गया है और तुम्हारे खानदान में फितना व फसाद कर रहा है। इस खबर पर हजरत मेहदी शाम की तरफ सफर करेंगे और तहकीक हाल के लिए 9 या 5 सवारों को आगे भेज देंगे। इनमें से एक शख्स आकर खबर देगा कि वो खबर महज गलत थी, अभी दज्जाल नहीं निकला। हजरत को इत्मीनान हो जाएगा और फिर सफर में जल्दी नहीं करेंगे। इत्मीनान के साथ दरमियान के मुल्कों का बंदोबस्त देखते भालते शाम पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर थोड़े ही दिन गुजरेंगे कि दज्जाल भी निकल आएगा, यानी दज्जाल कब निकलेगा? मेहदी तरान के निकलने के 5 ये 6 या 7 साल के बाद ये वाला मामला होगा। ठीक है, दज्जाल यहूदियों की कौम में से होगा, यानी बाकायदा एक फर्द है, ये एक इंसान है जिसके बारे में किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये एक इंसान मर्द और जिन औरत, या जिन मर्द और इंसान औरत, ठीक है, इन दोनों के इख्तलात का ये कि ये औलाद है। ठीक है, और ये बाकायदा यानी एक शक्ल है, यानी कोई एक एक थ्योरी नहीं है, कोई एक फलसफा नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक यानी एक अजीब व गरीब किस्म की शक्ल सूरत रखने वाला एक इंसानी गोया की चीज़ है। पहले शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा और नबूवत का दावा करेगा। फिर इस्फहान में पहुंचेगा और वहां के 70,000 यहूदी इसके साथ हो जाएंगे और फिर खुदाई का दावा शुरू करेगा। ठीक है, तो इस्फहान हम जानते हैं कि ईरान के इलाके के अंदर मौजूद है और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से मुल्कों से गुजरता हुआ यमन की सरहद तक पहुंचेगा और हर जगह से बहुत से बददीन साथ होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि मक्का मुअज्जमा के करीब आकर ठहरेगा, लेकिन फरिश्तों की हिफाजत की वजह से शहर के अंदर नहीं जाने पाएगा। फिर वहां से मदीना मुनव्वरा का इरादा करेगा और वहां भी फरिश्तों का पहरा होगा जिससे अंदर ना जाने पाएगा। इस अरसे में मदीना मुनव्वरा में जलजला आएगा और जितने आदमी दीन में सुस्त और कमजोर होंगे सब जलजले से डर कर मदीने से बाहर निकल खड़े होंगे और दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग होंगे जो दज्जाल से खूब बहस करेंगे। दज्जाल झुंझला कर उनको कत्ल कर देगा और फिर जिंदा करके पूछेगा कि अब तू मुझे खुदा मानता है? वो कहेंगे कि अब तो और भी यकीन हो गया कि तू दज्जाल है। फिर वो उनको मारना चाहेगा मगर उसका कुछ बस ना चलेगा और इन पर कोई चीज असर नहीं करेगी। यानी या तो अल्लाह ताला उसको कोई इस्तदराज अता फरमा देंगे उस वक्त दज्जाल को। इस्तदराज क्या होता है? वो करामती टाइप की चीज जो कि किसी काफिर फासिक फाजर को मिल जाए। ठीक है, यानी असबाब की नफी के साथ कोई ऐसी उसको ताकत मिल जाए कि असबाब के बगैर वो काम करे।
ठीक है, यानी असबाब के तहत क्या निजाम होता है कि जब आप किसी शख्स को दो टुकड़े में काट देते हैं तो वो मर जाता है, और मरे हुए इंसान को आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला ये काम कर सकते हैं, कोई रसूल, कोई नबी, कोई शेख, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस वक्त वो ये काम कैसे करेगा ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन उलमा से सुना है कि ये ना इस्तिदराज के दर्जे में काम करेगा, अल्लाह ताला उसको उस वक्त जो है ना ऐसा एक ऐसी पावर दे देंगे, ठीक है, या तो ये ऐसे करेगा, या हो सकता है पता नहीं उस जमाने में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई हुई हो कि जी वो पता नहीं, यानी जिस तरह से हार्ट निकाल करके बाहर रख देते हैं आज, ठीक है, और फिर उसी हार्ट को जो है वो वापस लगा देते हैं, पहले तो फरिश्ते आके काम किया करते थे, अब तो यहाँ पे जो डॉक्टर लोग इस किस्म के काम करते हैं, तो वो हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, ठीक है, फिर बाद में उसको इम्प्लांट कर देते हैं, तो हो सकता है बॉडी के दो पार्ट्स कर दिए जाएं, लेकिन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो है ना वो किस तरीके से उसको आर्टिफिशियल, अल्लाह वालम क्या, ठीक है, ये सब हमें नहीं मालूम। खैर, तो हजरत मेहदी वहां पहले से पहुंच चुके होंगे, अच्छा वहां से, अच्छा वो कहेंगे अब तुम जो और भी यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, फिर वो उनको मानना चाहेगा मगर इसका कुछ बस ना चलेगा और उन पर कोई चीज असर नहीं करेगी। वहां से दज्जाल मुल्क के शाम को रवाना होगा, जब दमिश्क के करीब पहुंचेगा तो हजरत मेहदी वहां पहले से पहुंच चुके होंगे और लड़ाई की तैयारी में मशगूल होंगे कि असर का वक्त आ जाएगा और मुअज्जिन अजान कहेगा, लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते नजर आएंगे और जामा मस्जिद के मशरकी मीनारे पर आकर ठहरेंगे और वहां से जीना लगाकर नीचे तशरीफ लाएंगे। हजरत मेहदी सब लड़ाई का इंतजाम उनके सुपुर्द करना चाहेंगे, वो फरमाएंगे कि लड़ाई का इंतजाम आप ही करें, मैं सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूं, ठीक है। जब सुबह होगी हजरत मेहदी लश्कर को आरास्ता फरमाएंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये नुजूल वाला वाकया है, वाला जो यानी तरतीब बताई है, तो ये भी उस जमाने में होगा और 100% होगा, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के यानी अंदाज से, चाहे वो दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता तौर पर ना, लोगों को बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, या तो मतलब वो अपनी नेक नियति की वजह से वो कुछ कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, या ये कि हो सकता है वो उनकी नियत ही खराब हो, तो वो ना ये जो आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस चलनी शुरू हो गई हैं, तो उनमें से एक वीडियो आपने देखी होगी यकीनन, शायद सब नहीं, होलोग्राफिक इमेजिंग, ठीक है, वो पूरा यानी कि होलोग्राफिक से जो है वो गोया कि शहर बना दिया गया आसमान के ऊपर और ये कर दिया गया वो कर दिया गया, ठीक है, और तो उसी को ना उसने कंक्लूजन क्या निकाला है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम का भी जो है ना ये वाकया जो है वो होलोग्राफिक इमेजिंग के जरिए से जो है ना वो धोखे के यानी धोखा दिया जाएगा और असल ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नहीं उतरे होंगे, ठीक है। तो अब लोग जो है ना वो इसको देख करके जो है ना वो बड़ी, हम लोग ना हमारी एक नेचर बन गई है कि हम बहुत इजीली ना हर चीज को बाय कर लेते हैं, ठीक है, जो बंदा कह रहा हो ना हम उसके ऊपर यकीन करना शुरू हो जाते हैं, आमन्ना व सदक़ना कहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कुछ सोचते भी नहीं है कि भाई क्या है पीछे, हमें कुछ पता है कि ये जो वीडियो हमारे पास आई है ये किसकी बनाई हुई वीडियो है, कौन है ये बंदा, ठीक है, क्या ये यानी है इसकी ऑथेंटिसिटी कोई कि नहीं ऑथेंटिसिटी को, हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है, हम बस हर चीज सुनते हैं, जो चीज हमें अजीब लगती है ना वो हम एक तो खुद उसके ऊपर आमन्ना व सदक़ना कहते हैं और फिर उसको हम आगे धड़ करके फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई सनद होती है, सनद दीन के अंदर किसी चीज के ऊपर यकीन करने के लिए आपको सनद चाहिए, कोई पीछे ऑथोराइजिंग सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी जिसको के सनद का सिलसिला, सर्टिफिकेशन का सिलसिला कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कोई चीज ऐसे ही आ जाए और जो आपको अनहोनी चीज लग रही है तो उसका मतलब है वो सही है, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि कोई शख्स जो है वो इस किस्म की बातें करके, ठीक है, चंद साइंटिफिक डिस्कवरीज और चंद साइंटिफिक बातें करके ना आपको जो है वो डाउट में मुब्तला करना चाह रहा हो, ठीक है, कि जी अब आप जो है ना वो हर चीज को डाउट करना शुरू हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, और दूसरी चीज भी हो सकती है कि नहीं ऐसा नहीं है बल्कि वो वाकई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ना इसके अंदर, राइट। तो हमको कुछ पता नहीं होता तो फिर हम उसके ऊपर 100% डिटर्मिनिस्टिक ना हो जाए करें, ठीक है, क्योंकि कल को ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब वो वाकई ईसा अलैहिस्सलाम हो लेकिन आपके जहन में जो है वो व्हाट्सएप की वीडियो घूम रही हो और आप उसके ऊपर यकीन ना करें, फिर आपका क्या बनेगा, राइट। और ये भी तो हो सकता है कि हाँ वो ना हो, ठीक है। तो भाई इसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। होलोग्राफिक इमेजिंग तो आप वहां पे बैठ करके क्या कोई लिटमस टेस्ट करेंगे उस वक्त, ये नाउज बिल्ला, ये ईसा अलैहि सलाम जो है ये क्या होलोग्राफिक इमेज है कि ये वाकई ईसा अलैहि सलाम है? आप क्या करेंगे, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे बैठ करके वहां पर? ठीक है, ये तो आप नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि हालात ही ऐसे होंगे, आपके पास शायद कोई टूल्स हो ही ना इस किस्म के, ठीक है। तो फिर कैसे पता लगेगा? तो भाई जैसे पता लगेगा ना उसके ऊपर मेहनत करें कि कैसे पता लगेगा, और वो कैसे पता लगेगा, ईमान की बेसिस पे पता लगेगा, ठीक है। ईमान आपका होगा, आप ईमान वालों के साथ होंगे तब पता लगेगा, और अगर आप मानने वालों में से ना होंगे, ईमान वालों में से ना होंगे, तो आप कितने ही साइंटिफिक टूल्स लेकर के आ जाएं आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। ये तो ऐसी चीज है ना, ये बात ऐसी है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए तो आपको किसी सनद की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी सनद तो मौजूद है ना, कुरान और हदीस मौजूद है ना हमारे पास, ठीक है। कि जो जिसने अपने ईमान पर मेहनत करी होगी, ठीक है, जिसने अल्लाह ताला के लिए अपनी जिंदगी को लगाया होगा, ठीक है, जो दीन के बारे में मुखलिस होगा, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, फरिश्तों का पहरा बिठाया हुआ है हिफाजत करने के लिए, तो उसको कैसे कोई गुमराह कर सकता है होलोग्राफी के जरिए से? हरगिज नहीं गुमराह कर सकता होलोग्राफी के जरिए से, ठीक है। तो बजाय इसके कि इस किस्म की खराफात के अंदर पड़े और उनको आगे फॉरवर्ड करने में लग जाया करें, अपने ईमान के ऊपर मेहनत करना चाहिए हमें इस वक्त,
ठीक है। तो बहरहाल ये जो बातें हैं ईसा अलैहि सलाम के उतरने के बारे में, तो वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जैसे कि लिखी हुई हैं, और हदीस हदीस के अंदर भी ये सारी बातें आई हैं इस तरह से ही। तो फरमाया कि जहाँ मस्जिद के मशरकी मीनार पे आगे ठहरेंगे और वहाँ से जीना लगा कर नीचे तशरीफ लाएंगे, हजरत मेदी जो है वो सब लड़ाई का इंतजाम उनके सपोर्ट करना चाहेंगे, और फरमाएंगे कि जी लड़ाई का इंतजाम आप ही करें, मैं सिर्फ दज्जाल के कतल के लिए आया हूँ। क्योंकि दज्जाल को कतल जो है वो ईसा अलैहि सलाम के अलावा और कोई नहीं कर सकता, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ना एक सहाबा कराम को अंदेशा हो गया था कि जी फलाना शख्स जो है ना ये दज्जाल है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अगर ये दज्जाल है ना तो फिर यानी इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता, सिर्फ ईसा ही इसको कत्ल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सुबह हुई, हजरत मेदी लश्कर को रास्ता फरमाएंगे, हजरत ईसा अलैहि सलाम एक घोड़ा और एक नेजा मंगवा कर दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे, और अहले इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे। बहुत सख्त सख्त लड़ाई होगी। इस वक्त ईसा अलैहि सलाम के सांस में यह तासीर होगी कि जहां तक निगाह जाए वहां तक सांस पहुंचेगी, और जिस काफिर को सांस की हवा लगा देंगे वो फौरन हलाक हो जाएगा, ठीक है। यानी वो एक ऐसा वक्त होगा कि जिसके अंदर ना असबाब के बजाय जो है ना वो असबाब से हट करके काम हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये सांस के जरिए से कोई मर नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला किस किस्म की कुव्वत दे करके भेजेंगे, या तो जो भी शक्ल होगी उसकी वो हम नहीं जानते, ठीक है। और इसकी तहकीक में पढ़ने से हमारी जन्नत और जहन्नुम का भी कोई फैसला नहीं होने वाला है कि वो किस शक्ल की सांस होगी और कैसे होगा, ये सब होगा, ठीक। हो सकता है हमें से कोई उस वक्त जिंदा ही ना हो, ठीक है, सबका ही जो है वो फैसला हो चुका हो दुनिया के अंदर, और हम कब्रों में पहुंचे हुए उस वक्त बैठे हुए हों, तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी ये कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं तो ये इल्म के लिए बताई हैं, और इसी वजह से हम उनको पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर हम हो उस वक्त तो हम अपनी हिफाजत करें, और ये बातें जो है वो अपनी औलादों में मुंतकिल करें, ताकि वो अगर उस वक्त हो तो वो अपनी हिफाजत का इंतजाम कर सकें, ठीक है, अपने ईमान पे मेहनत करें। चलें हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो ओवर हो चुका है, और बाकी इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो अगर तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।